नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। इंफोसिस के सह संस्थापक और चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने आईआईटी बंबई को 315 करोड़ रुपए दान किए। वह यूआईडीएआई के संस्थापक चेयरमैन भी हैं। नीलेकणी इससे पहले संस्थान को 85 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। वह आईआईटी बंबई के पूर्व छात्र हैं। इस राशि से संस्थान में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में शोध और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। संस्थान और नीलेकणी ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ये देश में किसी पूर्व छात्र द्वारा दिए गए सबसे बड़े दान में से एक है। इससे आईआईटी बंबई को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थानों के बीच बनने में मदद मिलेगी। नीलेकणी ने 1973 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के लिए आईआईटी बंबई में प्रवेश किया था। सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ने आयात प्रतिबंधों के कारण पाकिस्तान में अपने कार एवं बाइक संयंत्र को कुछ दिन के लिए बंद करने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को बताया गया कि पाकिस्तान में स्थित इस संयंत्र को 22 जून से 8 जुलाई तक बंद रखा जाएगा। जापानी वाहन कंपनी ने करीब एक सप्ताह पहले पाकिस्तान में अपने चौपहिया संयंत्र में परिचालन शुरू किया था। यह संयंत्र 75 दिन से अधिक समय से बंद था। द डॉन न्यूज के मुताबिक कंपनी ने सोमवार को पाकिस्तान शेयर बाजार को बताया कि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक द्वारा पिछले साल मई में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उसे कलपुर्जों और सहायक उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रसोई घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाने वाली कंपनी ग्रीन शेफ अप्लायंसेस ने मंगलवार को कहा कि 23 जून को खुल रहे उसके आईपीओ के लिए मुख्य दायरा 82 से 87 रुपए प्रति शेयर तक किया गया है। ग्रीन शेफ अप्लायंसेस का आईपीओ 23 जून को खुलकर 27 जून को बंद होगा। एंकर निवेशक 22 जून को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने बयान में कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के छोटे एवं मझोले कारोबारों के लिए स्थापित मंच NSE इमर्ज पर उसके शेयर सूचीबद्ध होंगे। भारतीय उद्योग जगत को लगता है कि कारोबारी सुगमता को बढ़ाने और GST प्रशासन में सुधार के अगले चरण के लिए सही समय आ गया है। डेलॉइट के एक सर्वेक्षण में मंगलवार को ये बात कही गई। सर्वेक्षण में उद्योग जगत ने मौजूदा कर विवादों के समाधान के लिए एक माफी योजना लाने की अपील भी की। सर्वेक्षण में कहा गया कि 1 जुलाई 2017 को GST की शुरुआत के बाद से इसके प्रशासन में जबरदस्त बदलाव आया। सर्वेक्षण में पता चला कि सरलीकृत कर व्यवस्था के लिए स्वीकृति बढ़ रही है और 88% MSME ने अनुकूलित आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ माल और सेवाओं की लागत में कमी की बात कही। प्रतिभागियों में 80% ने कहा कि कारोबारी सुगमता बढ़ाने और GST प्रशासन में सुधार के अगले चरण के लिए सही समय आ गया है। डेलाइट इंडिया में पार्टनर और लीडर महेश जयसिंह ने कहा कि भारतीय कंपनियां GST व्यवस्था से हुए बदलावों को लेकर काफी सकारात्मक हैं। कोट्टायम जिले में 3411 करोड़ रुपए की लागत से सबरीमाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने के केरल सरकार के प्रस्ताव को पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने हरी झंडी दे दी। समिति ने हवाई अड्डे के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी देने की सिफारिश की। मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पिछले महीने नई दिल्ली में हुई बैठक में TOR की सिफारिश की। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इसके बाद केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड इस परियोजना के प्रभाव का आकलन करने और डिजाइन करने के अलावा योजना के लिए एक प्रारूप और संरचना तैयार कर सकेगी। कोट्टायम जिले के एरुमेली में लगभग 2570 एकड़ भूमि पर हवाई अड्डे को बनाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के परिचालन चरण में 600 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सेबी ने वॉकहार्ट लिमिटेड के पूर्व कार्यकारी यतेंद्र कुमार को प्रतिभूति बाजार से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उनके खिलाफ ये कदम भेदिया कारोबार से संबंधित मामलों में उठाया गया। इसके साथ ही नियामक ने कुमार को भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन कर बचाई गई 14 लाख रुपए की राशि लौटाने का भी निर्देश दिया। कुमार पर 1 साल के लिए वॉकहार्ट लिमिटेड की प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त और किसी तरह के अन्य सौदे की भी रोक रहेगी। सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए जनवरी 2022 से अगस्त 2013 की अवधि के लिए कंपनी के शेयरों में कारोबार की जांच की थी। नियामक ने सोमवार को अपने 50 पृष्ठ के आदेश में कहा कि कुमार ने कंपनी के शेयरों में उस समय कारोबार किया जबकि उनके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी थी। ये जानकारी अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन द्वारा वॉकहार्ट के महाराष्ट्र के वालुज विनिर्माण संयंत्र को फार्म 483 जारी करने से संबंधित थी। चीन की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने प्रबंधन में बड़े फैसले करते हुए नए सीईओ और चेयरमैन की घोषणा की। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ई कॉमर्स समूह के चेयरमैन एडी वू सीईओ के रूप में डेनियल झांग की जगह लेंगे। झांग को अलीबाबा की क्लाउड कंप्यूटिंग इकाई का सीईओ और चेयरमैन बनाया गया। अलीबाबा के वर्तमान कार्यकारी उपाध्यक्ष जोसेफ तसाई अलीबाबा समूह के चेयरमैन के रूप में एडी वू की जगह लेंगे। ये सभी बदलाव 10 सितंबर से प्रभावी होंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।